राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदि जय
Yeah.
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Rama. Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe
Jai Radha
Giridhari Radhe Jai Jai Jagannath Baladev Subhadrari Jai राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, शशि गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे
हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज बहुत विशेष और परम पवित्र दिन है। आज जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान का आविर्भाव दिन है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए थे, इसलिए आज हम
भागवत कथा न लेकर जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा करेंगे। आप सब श्री राधा गिरधारी मंदिर में जाते होंगे। श्री राधा गिरधारी राधा कृष्ण को तो सब लोग जानते हैं, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी को भी प्रायः सब लोग जानते हैं, परंतु राधा गिरधारी को जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते वक्त प्रणाम मंत्र बोला जाता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति इत्यादि। श्रीमती राधा रानी को जब प्रणाम करते हैं तो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं तो नमो महावदान्याय, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो नमो विष्णु पादाय इत्यादि। तो आपको प्रश्न होता होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को प्रणाम करते समय हमें क्या बोलना चाहिए? ये सब के लिए मंत्र है, हम जानते हैं। तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करते वक्त क्या बोलना चाहिए, बलदेव जी को प्रणाम करते वक्त क्या बोलना चाहिए, और सुभद्रा जी को प्रणाम करते वक्त क्या बोलना चाहिए? तो आज हमारे पास जो श्लोक, तीन श्लोक है, ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के प्रणाम मंत्र हैं। और जब कभी भी हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को प्रणाम करेंगे तो यह श्लोक का, यह मंत्र का उच्चारण करना है। तो हम सब लोग आइए मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, बाद में सुभद्रा जी का और बाद में बलदेव जी का। देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशन,
प्रवनर्ति विनाशन,
त्राहि मां पुंडरीकाक्ष,
त्राहि मां पुंडरीकाक्ष,
पतितं भवसागरे,
पतितं भवसागरे,
जय देवी भक्ति दात्री,
जय देवी भक्ति दात्री,
प्रसिद्ध परमेश्वरी,
प्रसिद्ध परमेश्वरी,
जय देवी सुभद्रे त्वं,
जय देवी सुभद्रे त्वं,
सर्वेषां भद्रदायिनी,
सर्वेषां भद्रदायिनी,
नमस्ते तुहल ग्राम,
नमस्ते तुहल ग्राम,
नमस्ते मूषलायुध,
नमस्ते मूषलायुध,
नमस्ते रेवती कांत,
नमस्ते रेवती कांत,
नमस्ते भक्तवत्सल,
नमस्ते भक्तवत्सल।
ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश श्रीरूपं सकृजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, पेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। दुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे प्रियो जगत करो करुणावतारो वंदे हम अनंत अद्भुतेश्वर्यम् श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादा भक्तिशास्त्र प्रवर्तत। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज विशेष दिन है, जगन्नाथ इस जगत के नाथ का आविर्भाव दिन है। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं कथा प्रारंभ कर देता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा इस प्रकार से है। आज से कई कई वर्ष पूर्व, कई युगों पूर्व भी कहा जा सकता है, एक देश था जिसका नाम था अवंतिकापुर। अवंतिकापुर देश का राजा जिसका नाम था इंद्रधुम्न। राजा इंद्रधुम्न चक्रवर्ती सम्राट थे। शास्त्र में कहा गया है कि यह ब्रह्मा जी के पुत्र के पुत्र प्रपौत्र थे। बहुत ही सुंदर राज्य कारोबार करते थे, बहुत ही सुंदर राज करते थे। उनके अंडर में जितनी भी प्रजा थी ये सब अनुकूल थी, सुखी थी, किसी भी प्रकार का दुख और क्लेश राजा इंद्रधुम्न के राज्य में नहीं था। होता है यदि राजा अच्छे हो, राजा यदि धार्मिक हो, तो प्रजा निश्चित रूप से सुखी रह सकती। इस संसार की प्रजा दुखी है, इसका कारण यही है कि प्रजा के ऊपर जो शासन करने वाले हैं ये ठीक नहीं है। शासनकर्ता, नेता इत्यादि अधार्मिक है, भगवान के भक्त नहीं है, इसलिए उसके अंडर में जो प्रजा है यह भी दुखी है। रामायण में वर्णन है, भगवान श्री राम के राज्य में इतना सुख था, इतना सुख था। आज भी लोग इच्छा करते हैं कि आज राम राज्य आ जाए, क्योंकि भगवान के राज्य में दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में किसी भी प्रकार का क्लेश दुख नहीं था, क्योंकि राजा ऐसे हुआ करते थे। तो राजा इंद्रधुम्न एक ऐसे ही राजा थे, प्रजा सुखी थी, क्योंकि वे अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते थे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। और जब राजा इंद्र धूम के जीवन का लंबा समय बीत गया, जब उनकी उम्र 50 साल की हुई, तो राजा इंद्र धूम के हृदय में एक बहुत बड़ी लालसा उत्पन्न हुई। और लालसा यही थी कि मुझे इसी आंखों से भगवान का दर्शन करना है। और इस लालसा के कारण न तो ठीक से सो सकते थे, न तो ठीक से खा पी सकते थे। केवल एक ही इच्छा, केवल एक ही लालसा उनके हृदय में थी कि इसी आंखों से भगवान का दर्शन करना है। राजा के मन में ऐसा विचार आना ये बहुत दुर्लभ है, परंतु एक सिद्धांत में आपको कह दूं, यदि कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, राजा भी क्यों न हो, यदि वह वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करता है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, अपने जीवन के कर्तव्य करते करते भगवान की भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन के अंतिम समय में केवल कृष्ण दर्शन लालसा होगी। लेकिन वह अभ्यास अभी से ही होना चाहिए। देखिए, धन भगवान की भक्ति में बाधा नहीं है। कभी कभी कहा जाता है धन भक्ति में बाधा है, धन भक्ति में बाधा नहीं है। राजा है इंद्रदुम्न, राजा होकर उनके मन में इच्छा हो रही है कि भगवान का दर्शन करो, धन बाधा नहीं है। धन में जो आसक्ति है और वह धन हम गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यह भजन में बाधा है। यदि हम हमारे धन का इस्तेमाल भगवान की भक्ति में करें, दान पुण्य मंदिर में दे, तो वही धन कमाते कमाते एक दिन हमारे बुद्धि में, हमारे मन में ऐसा विचार आएगा कि यह सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का भजन करो, जैसे राजा इंद्र धूम को आया। एक बहुत बड़ी राजसभा बुलाई राजा ने, राजा है कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी राजसभा, लाखों करोड़ों लोग उस सभा में उपस्थित हुए, और इस सभा के बीचों बीच राजा ने ऐलान किया कि इस हजारों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, मैं सभी लोगों के चरणों में प्रार्थना करके कहता हूँ कि आप लोगों में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे भगवान का दर्शन करा सके। तो सभा में से कोई नहीं बोला, क्योंकि राजा को मरने के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना था, राजा को इसी जीवन में इसी आंख से भगवान का दर्शन करना था। राजा बहुत नर्वस हो गए। राजा की तो वही हालत थी जैसे मीराबाई की थी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। मीराबाई ने बहुत ही सुंदर गाया है कि यह अखिया भगवान के दर्शन के लिए प्यासी है। हे कृष्ण, आपकी राह देख देख कर मेरी आंखें दुखने लगी, लेकिन फिर भी आपका दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान को प्रार्थना करती है कि प्रभु प्रभु, मैं कभी कभी कोयल की आवाज सुनती हूँ, और कोयल विरह भाव में जो चिल्लाती रहती है, उस कोयल की आवाज को सुनकर आपको देखने की और लालसा बढ़ती रहती। प्रभु, जब इस प्रकार से मैं आपको देखने की लालसा करती हूँ, तो संसार के लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे पागल कहते हैं, परंतु फिर भी लालसा बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। प्रभु, कब आप मुझे दर्शन दोगे? इसी भाव में राजा इंद्रधूम भगवान को देखना चाहते थे, बहुत नर्वस हुए, परंतु भगवान भी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। उस करोड़ों की सभा में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़े होकर कहा कि राजन, मेरे पास एक उपाय है। राजा ने उसे करीब बुलाया और उस बूढ़े ने कहा कि दक्षिण भारत में नीलाद्री नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत की तलेटी में शबर जाति के लोग रहते हैं। उस शबर जाति में जो सभी शबरों का लीडर है, वह आज भी साक्षात भगवान का दर्शन करता है, भगवान के साथ बातचीत करता है। यदि तुम उसका कांटेक्ट करो तो शायद आपको भगवान का दर्शन हो सकता है। इतना कह के वो बूढ़ा वहां से चला गया। राजा ने आदेश दिया अपने सैन्य को, चलो साथ में हम सब जाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। परंतु राजा का एक मित्र था, वो ब्राह्मण था और उसका नाम था विद्यापति। राजा के मित्र ने कहा, राजन ये बूढ़े की बात का क्या भरोसा, ऐसे लोग तो बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आप एक काम करो, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले मैं जाकर देख लेता हूं, यदि भगवान वहां पर होंगे तो मैं आपको बुला लूंगा। राजा इंद्रधूम ने कहा कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी मित्र। मित्र विद्यापति तुम जल्दी जाओ और जल्दी पता लगाकर वापस आओ। राजा ने विद्यापति ब्राह्मण को भेजने के लिए सारी तैयारी कर दी। विद्यापति ब्राह्मण चलते 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 पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलाद्री पर्वत के पास पहुंचा और नीलाद्री पर्वत की तलेटी में बहुत बड़ी बस्ती थी और यह सारी बस्ती शबरों की थी। शबर उसे कहा जाता है जो सुअर को मारकर खाते हैं। सुअर को मारकर खाने वाले को शबर कहते हैं, आदिवासी ऑलमोस्ट। तो विद्यापति ने उस शबर जातियों में बहुत ढूंढा, ये सुअर खाने वाले को भगवान कैसे दर्शन देते होंगे। ढूंढते ढूंढते विद्यापति को इतना पता चला कि यह शबर जाति का जो राजा है, लीडर, और जिनका नाम विश्व वसु है, विश्व वसु रोज नीलाद्री पर्वत के ऊपर जाता है और जाकर भगवान का दर्शन करके आता है, परंतु वो अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं जाता है। यदि उसके साथ कोई जाए तो उसे मार देता है। तो विद्यापति सोचने लगा कि अब यह विश्व वसु का कांटेक्ट कैसे किया जाए, ये तो मेरे उसके साथ लेके जाने वाला तो है नहीं, क्या करे। तब विद्यापति को पता चला कि विश्व वसु सबर की एक पुत्री है जिसका नाम ललिता था और वह विवाह करने योग्य हो चुकी है। और विद्यापति ब्राह्मण भी बहुत सुंदर थे, देखने में बहुत सुंदर थे और गुणशील गुणवान भी थे। विद्यापति ब्राह्मण ने सोचा कि राजा की इच्छा पूरी करनी और भगवान का दर्शन करना है, उसके लिए कुर्बानी देनी है तो दे देनी पड़ेगी। विद्यापति ब्राह्मण ने सोचा कि मैं शबर राजा के इस पुत्री ललिता के साथ विवाह कर लेता हूं और विवाह करने के बाद जब जमाई बन जाऊंगा तो शायद दर्शन हो जाएगा। शबर जाति में प्रस्ताव रखा और एक दो दिन में विद्यापति ने उस विश्व वसु की पुत्री ललिता के साथ विवाह कर लिया। देखिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए यदि किसी भक्त लड़की से विवाह करना पड़े तो कर लेना चाहिए। फिर यह नहीं देखना चाहिए कि इसका कुल कैसा है, इसका रूप कैसा है। चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में कहते हैं कि यदि कोई लड़की भक्त है और यदि कोई लड़का भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो उस भक्त लड़की से विवाह कर लेना चाहिए, भले उसका कुल नीचा हो, भले देखने में कुरूप हो, परंतु भक्त है तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। क्योंकि यस्यास्ति भक्ति भगवंत किंचना सर्वे गुणे तत्र समा सते सुरा, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसमें सभी देवी गुण आ जाते हैं, फिर उसका कुल नहीं देखा जाता है, वो वैष्णव बन जाता है। तो विद्यापति ब्राह्मण ने शबर विश्व वसु की लड़की ललिता के साथ विवाह किया। ललिता भी सोच में पड़ गई कि ये इतने बड़े ब्राह्मण कुल के लड़के ने मेरे साथ विवाह क्यों किया होगा। विवाह हुआ और कुछ दिन के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि ललिता, मैंने सुना है कि आपके पिताजी रोज नीलाद्री पर्वत पर भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ललिता प्रिय, मैंने यह भी देखा है कि जब तुम्हारे पिताजी अर्थात मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, जब मेरे ससुर जी घर से निकलते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते हैं, और जब शाम को उस पर्वत से लौटते हैं तो उनके शरीर से सुंदर सुंदर सुगंध आती है और उसके पास सुंदर सुंदर ऐसे फूल होते हैं जो इस पृथ्वी पर नहीं देखने मिलते हैं। निश्चित रूप से ये भगवान का दर्शन करते हैं। अब ललिता को उस बात का पता था, परंतु उसके पिताजी ने कहा था किसी को मत बताना। परंतु आखिर पति और पत्नी में क्या पर्दा, पति पत्नी के बीच में कोई बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। ललिता ने आखिर कह दिया अपने पति विद्यापति को कि मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। अब स्त्रियों का तो यह स्वभाव है कह देना। पता है क्या होता है, यदि किसी स्त्री को एक बात का पता चला तो दूसरी स्त्री को कहती है कि मैं सखी, मैं एक बात बता रही हूँ लेकिन किसी को कहना मत, और पूरी बात कह देती। दूसरी स्त्री से मिलेगी, एक बात कहती हूँ परंतु किसी को कहना मत, किसी को कहना मत, किसी को कहना मत, वैसे 50 स्त्री को बता देगी। तो यहां पर ललिता ने अपने पति को कह दिया कि मेरे पिताजी रोज नीलाद्रि पर्वत के ऊपर जाते हैं और वहां पर साक्षात नील माधव भगवान उपस्थित है। नील माधव भगवान के साथ मेरे पिताजी बातचीत करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके लिए वहां पर भोग बनाते हैं और पूजा पाठ करके शाम को वापस आते हैं। सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं और प्रतिदिन पिताजी जाते हैं। तो विद्यापति ने कहा कि प्रिय, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो? ललिता ने कहा हाँ प्रेम तो करती हूँ। तो प्रिय मेरे लिए मेरा एक काम तो कर दो। कहा क्या? तुम्हारे पिताजी को थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि मुझे भी एक बार उनके साथ लेकर जाए। आखिर मैं भगवान का दर्शन करूंगा, मैं भक्ति करूंगा तो आधा फल तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे भले के लिए मैं कह रहा हूं, ये सत्य बात है। यदि पति भगवान की भक्ति करता है तो उसका आधा फल पत्नी को मिलता है। इसलिए पतियों को तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आधा फल पत्नी को तब मिलता है जब पत्नी पति की सेवा करे। आज तो सेवा कराने वाली पत्नी का प्रमाण ज्यादा है। तो प्रिय, यदि तुम्हारे पिताजी मुझे भगवान का दर्शन कराएंगे तो आधा फल तो तुम्हें मिलेगा। पिताजी को जरा कुछ रिक्वेस्ट करो कि मुझे लेकर जाए। तो ललिता अपने पति की बात में आ गई और गई विश्वसु अपने पिता के पास। सबसे पहले पिता को जाकर कहा कि पिताजी आपने जो मुझे वो बात बताई थी, राज की बात, वो मैंने आज मेरे पति को बता दी। इतना कहते ही विश्वसु अपनी लड़की के ऊपर इतना क्रोधित हुआ, बहुत क्रोधित हुआ। लेकिन आखिर तो उनकी पुत्री थी। जब वे शांत हुए तब उनकी पुत्री ने कहा कि पिताजी आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, मैं आपकी लड़की हूं, इतना दिन हो गया, इतना साल मुझे जन्म लिए हो गया, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, जीवन में एक चीज मैं आपसे मांग रही हूं। पिताजी ने कहा क्या? मेरे पति को एक बार आपके साथ लेकर जाओ। विश्वसु ने कहा ये जीवन में कभी नहीं होगा, मैं किसी को भी मेरे साथ नहीं लेकर जा सकता। ललिता ने अपने पिता के चरण पकड़ लिए, बहुत अनुनय विनय प्रदान की। जब बहुत बहुत प्रार्थना की तब विश्वसु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पति को एक दिन के लिए मेरे साथ लेकर जाऊंगा, परंतु मेरी शर्त होगी। ललिता ने कहा कि सारी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे पति विद्यापति को आपके साथ एक बार लेकर जाओ। तो उसने कहा, विश्वसु ने कहा कि तुम्हारे पति मेरे साथ आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसके आंखों के ऊपर मैं यहां घर से ही पट्टी बांध दूंगा, मैं उसको रास्ता नहीं दिखाऊंगा, यहां से पट्टी बांध कर लेकर जाऊंगा। ललिता ने कहा ठीक है तो बोल देना तुम्हारे पति को कल सुबह तैयार हो जाए। ललिता आई घर पर, घर पर आकर अपने पति देव को यह खुश खबर सुनाई और कहा कि कल सुबह तुम्हें मेरे पिताजी के साथ जाना है, परंतु आंखों पे पट्टी बांध कर जाना है। विद्यापति ने कहा गड़बड़ हो गई, लेकिन आखिर तो बुद्धिमान थे, गुणशील थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं ललिता, एक काम करो, जाओ दुकान से 1 किलो सरसों के दाने लेकर आओ। ललिता ने कहा सरसों के दाने क्यों? सरसों का अर्थ है राई के दाने, सरसों के दाने क्यों? विद्यापति ने कहा जाओ लेकर आओ, मैं कहता हूं। दूसरे दिन सुबह हुआ, विद्यापति अपने ससुर जी के कक्ष में गए, कमरे में गए और ससुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आंखों के ऊपर पट्टी बांध रहा हूं और ये पट्टी तुम खोलना मत। ससुर ने जमाई के आंखों पे पट्टी बांध दी और ससुर और जमाई, ससुर जमाई का हाथ पकड़कर दोनों दरवाजे से निकल ही रहे थे, तब तक जमाई ने कहा अपनी पत्नी को ललिता जरा यहां पर आओ। अंदर जाके ललिता को कहा कि जो सरसों के दाने कल लाई थी जरा मुझे दो। पट्टी आंखों पर बांधी हुई है, दोनों हाथ सरसों के दाने की थैली में डाला और दोनों हाथों में सरसों के दाने पकड़ लिए और पीछे रख लिए और दोनों ससुर और जमाई दोनों निकले हैं नीलाद्री पर्वत के ऊपर। अबे सरसों के दाने क्यों लेकर गए थे ये अभी पता चलेगा कि जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये विद्यापति सरसों के दो दो दाने डालते जाते थे रास्ते में। तो धीरे 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 चलते 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 1, 2, 3 घंटे तक चलते रहे और चलते चलते नीलाद्री पर्वत की शिखर पर पहुंच गए और विद्यापति ने देखा कि बहुत सुंदर वातावरण है, बहुत सुंदर पंखी का आवाज है, झरने का आवाज है, बहुत सुंदर वातावरण का अनुभव किया। और धीरे धीरे जब भगवान के मंदिर के पास पहुंचे, एक बहुत ही जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था और विश्ववसु ने लकड़े से उस पेड़ में एक मंदिर बनाकर रखा था और वहां पर आरती हो रही थी, मृदंग नगाड़े पखावज बज रहे थे और विद्यापति को पता चला कि लगता है मंदिर आ चुका है। तो विद्यापति ने ससुर जी को कहा कि अब तो पट्टी खोलो, रास्ता तो समाप्त हो गया है, मंदिर आ गया, अब तो पट्टी खोलो। जब ससुर जी ने, विश्ववसु ने विद्यापति के आंख से पट्टी खोली, पट्टी खोलते ही विद्यापति ने दर्शन किया भगवान नील माधव का। नील माधव 6 फुट और 8 इंच के लंबे और चौड़े थे और उनकी आरती स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। इंद्र साक्षात नील माधव भगवान को हार पहना रहे थे और बाकी के देवता गा रहे थे और गंधर्वगण पखावज ढोल नगाड़े बजा रहे थे और अप्सराएं नाच गान कर रही थी। इस प्रकार का दृश्य विद्यापति ने देखा कि साक्षात नील माधव भगवान उपस्थित। हरे कृष्णा हरे, विद्यापति तो भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ देर के बाद ब्रह्मा जी आरती करके चले गए, इंद्र हार पहनाकर चले गए, सारे देवी देवतागण चले गए। विश्ववसु ने कहा कि विद्यापति अब मेरी सेवा शुरू हो रही है, मुझे कुछ फूल चुनने जाना है, लेकिन उसके पहले चलो भगवान से मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा दूं। ससुर जी जमाई को लेकर भगवान के पास गए और भगवान को कहा कि ये मेरी लड़की ललिता, मैंने जो आपको बताया था, जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं वैसे भगवान से बात विश्ववसु की रोज होती थी। तो प्रभु मेरी जो पत्नी लड़की है ना, ये उनके पति है और मेरे जमाई है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं परंतु भक्त का भाव है। तो विश्ववसु ने विद्यापति को कहा कि विद्यापति यही नील माधव है, तुम और नील माधव दोनों बातचीत करो, मैं जाकर आता हूँ, कुछ फूल तोड़कर आता हूँ। विद्यापति ब्राह्मण ने वहां पर एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। भगवान के उस मंदिर के थोड़े दूर एक कुंड था, जिस कुंड का नाम था रोहिणी कुंड। एक आश्चर्यमय दृश्य देखा कि कौवा उड़ते उड़ते आकाश के मार्ग से आया और आकाश में न जाने क्या पता वो मर गया या बेहोश हो गया, वो आकाश से गिरा। जैसे ही वह रोहिणी कुंड में गिरा, रोहिणी कुंड का जल स्पर्श होते ही वह तुरंत चतुर्भुज रूप में होकर भगवान के धाम में चला गया। अद्भुत दृश्य का दर्शन विद्यापति ने किया। विद्यापति ने सोचा यहाँ से डायरेक्ट वैकुंठ में जाने का रास्ता है, सोचा कि चलो हम भी हमारी जीवन लीला को समाप्त करके हम भी भगवान के धाम में चले जाए। तो तुरंत भगवान को छोड़कर रोहिणी कुंड के पास आए और आकर जैसे ही उसमें स्नान उसमें डुबकी लगाना जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, विद्यापति क्या करने जा रहे हो? राजा इंद्र धूम्न कई दिनों से तुम्हारी राह देखकर बैठा है, भगवान का दर्शन उसे करना है और उसे छोड़कर तुम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। ये भक्त का स्वभाव नहीं है। भक्त जो होते हैं वे पर दुखे दुखी दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। भक्त सभी लोगों को साथ में लेकर भक्ति करते हैं, अकेले अकेले बाबा जी नहीं बन जाते। भगवान ने ऐसा नहीं कहा था, परंतु भाव यह है कि भक्त अकेले भजन नहीं करते, उनकी कृपा सब लोग के ऊपर होती है। जाओ इंद्र धूम को लेकर आओ। विद्यापति समझ गए कि रोहिणी कुंड में नहीं गिरना है। देखिए रोहिणी कुंड जो मैं आपको बता रहा हूं, आज भी यह रोहिणी कुंड है। मैं आपको अंत में वर्णन करूंगा और वहां पर हम जाते ही हैं और हम जाएंगे भी। तो जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई तो विद्यापति ने सोचा कि अब तो राजा इंद्र धूम को मैं यहां पर लेकर आऊंगा। ये सोच रहे थे उतने में ही विश्ववसु फूल लेकर, भगवान की सेवा के लिए फूल लेकर वापस नील माधव भगवान के पास आए और विद्यापति भी वहां पर पहुंच गए। ससुर जमाई दोनों बैठे हैं, उतने में भगवान नील माधव थोड़े आगे आकर विश्ववसु से कहने लगे, उस शबर के राजा से कहने लगे कि हे विश्ववसु, अब बहुत सालों तक आपने मेरी पूजा की, मुझे भोग लगाया, आपने मेरे साथ बातचीत की और मैंने भी आपकी सारी सारी पूजा ग्रहण की। यद्यपि तुम शबर हो, तुम सुअरों को खाने वाले जाति में से हो, लेकिन तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिया और बहुत सालों तक तुमने मेरी पूजा की, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये वन के फल फूलों से मेरी पूजा न हो, अब मैं चाहता हूं कि ऐश्वर्यमय में मेरी पूजा हो। इसलिए हे विश्ववसु, अब मैं चाहता हूं कि मेरी पूजा इस संसार का सबसे बड़ा राजा इंद्र धूम्न करे ऐश्वर्यमय भोगों से। इस प्रकार से जब भगवान ने कहा तो भगवान की बात तो भगवान को तो बाद में, पहले विश्ववसु ने विद्यापति को लिया। लगता है तुमने ही भगवान को कुछ कहा, इसीलिए मैं यहां पर किसी व्यक्ति को नहीं लेकर आता था कि मेरी सेवा पूजा में बाधा बने। तुमने ही भगवान को कुछ कहा है, तुमने ही ये नील माधव के कान भरे हैं। अब भगवान इतने बुद्धू हैं कि उसकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन ये भक्तों का भाव है। विश्ववसु विद्यापति से कहने लगे, तुमने भगवान को भरमाया है, तुम ही भगवान को यहां से लेकर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहके विद्यापति के हाथ को दोनों हाथ को रस्सी से बांध लिया और जैसे पशु और भेड़ को बांधकर लेकर जाते हैं, वैसे अपने जमाए को वहां से लेकर अपने घर में लाकर एक कमरे में बंद कर दिए और सिर पे हाथ देकर बैठ गए कि कितनी अच्छी पूजा करता था, प्रतिदिन भगवान नील माधव मेरे साथ बात करते थे, अब ये सब कुछ बंद होने जा रहा है, बहुत दुख की बात है ये विद्यापति के एक बार लेकर जाने में। इस प्रकार से अपना दुख प्रकट कर रहे थे, उतने में विद्यापति तो बेचारा उसको एक कमरे में बांधा हुआ था, विश्ववसु शबर राज विश्ववसु जब वहां से कुछ देर के लिए कुछ आगे पीछे दूर गए, उतने में ललिता आई और ललिता ने अपने पति को उस कमरे से छुड़ा दिया। जैसे ही ललिता ने अपने पति को उस कमरे से छुड़ाया, तुरंत विद्यापति ने कहा कि ललिता मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बिल्कुल 15 दिन के बाद पूर्णिमा के दिन मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा, राजा इंद्रद्युम्न और उनकी सारी सेना को लेकर मैं आऊंगा और भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे और भगवान की बहुत बड़ी ऐश्वर्य में हम पूजा करेंगे। विद्यापति यहाँ से भागे और भागकर भागते भागते 2 दिन में अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंच गए। राजा को सारी कथा सुनाई कि भगवान भी आपसे पूजा लेना चाहते हैं, तुरंत सबको लेकर हमें जाना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न तैयार हुए और राजा इंद्रद्युम्न का एक मंत्री था जिनका नाम था युद्धवीर। देखिए ये सब नाम याद रखिए क्योंकि आगे कथा में बहुत इस नाम का इस्तेमाल होने वाला है। राजा इंद्रद्युम्न का एक मंत्री था जिसका नाम था युद्धवीर। राजा ने अपने मंत्री युद्धवीर को साथ में लिया, विद्यापति को साथ में लिया और अपनी कई लाखों सेना को साथ में लिया। घोड़े पे सवार होकर बहुत तेज गति से नीलाद्री पर्वत की तलेटी में पहुंच गए। जब राजा नीलाद्री पर्वत की तलेटी में पहुंचे, विद्यापति को पूछा क्या इसी पहाड़ के ऊपर भगवान है? विद्यापति ने कहा हाँ इसी पहाड़ के ऊपर। तब राजा घोड़े से उतरे और घोड़े से उतर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सारे बख्तर जितना भी अपना ऐश्वर्यमय जो कपड़ा था सब कुछ निकाल दिया और केवल एक धोती और कुर्ते में राजा इंद्रद्युम्न उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। सिद्धांत यह है कि हमारे पास कितना भी धन क्यों न हो, परंतु जब हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो दास बनकर जाना चाहिए। कुछ लोग मंदिरों में, भगवान के मंदिरों में सज धज कर जाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं और बहुत कुछ अलंकार पहनते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन वाले कपड़े पहनते हैं, परंतु ये भगवान के दरबार में ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, हम सब भगवान के दास हैं, तो दास को दास की तरह रहना चाहिए। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो गाड़ी और जो भी जूता और जो भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं ये त्याग कर धोती और कुर्ता एक वैष्णव एटिकेट में जाना चाहिए। तो राजा इंद्रद्युम्न ये सब कुछ निकाल कर उस नीलाद्री पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। चलते चलते अब रास्ता कैसे पता था, क्योंकि आंख तो बंधी हुई थी विद्यापति की जब गए तब, लेकिन विद्यापति ने चलते चलते जो सरसों के बीज गिराए थे वह बीज के छोटे छोटे छोड़ और छोटे छोटे पौधे बन गए थे। तो विद्यापति उस पौधों के किनारे किनारे होकर उस पौधे को पकड़कर वह धीरे धीरे करके उस नील माधव नीलाद्री पर्वत के ऊपर चढ़ गए और चढ़कर नील माधव भगवान के मंदिर के पास पहुंच गए। राजा बहुत खुश हुए, युद्धवीर खुश हुए, विद्यापति खुश हुए और राजा ने कहा जल्दी यह भगवान के दरबार द्वार खोलो, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। जब विद्यापति भगवान का मंत्र बोलकर भगवान के पट को खोला तो खोलकर देखा कि वहां पर उस मंदिर में भगवान नहीं है। जितना भी उल्लास था वो शोक में बदल गया। भगवान कहां गए? सब लोग ढूंढने लगे। विद्यापति ने कहा कि मैं 5 दिन पहले यहीं से दर्शन करके गया था, मैंने बात भी की भगवान से और यही रोहिणी कुंड यहां पर ही वह कौवा गिरा था चतुर्भुज होकर, कहा इतने दिन में भगवान कहां चले गए? इंद्रद्युम्न ने कहा आपके साथ यहां पर कौन आया था? विद्यापति ने कहा शबर राज विश्ववसु मुझे लेकर आए थे। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा हाँ शबर राज विश्ववसु ने ही भगवान को कहीं छिपाया है। इंद्रद्युम्न बहुत जल्द तेज गति से उस पर्वत से नीचे उतरे और उस शबरों की बस्ती में आए, कहां है शबर राज विश्ववसु ढूंढने लगे और कैसे भी करके उस शबर विश्ववसु को खोज निकाला और खोज कर कहा कि बताओ भगवान को कहां छिपाया है? विश्ववसु ने जवाब नहीं दिया दूसरी बार कहा जवाब नहीं दिया, तीसरी बार कहा, तीसरी बार जब जवाब नहीं दिया, राजा इंद्रधुम ने तलवार को बाहर निकाला, विश्ववसु को कहा कि यदि तुम अब जवाब नहीं दोगे तो धड़ से सिर को अलग कर दूंगा। विश्ववसु ने जब जवाब नहीं दिया, राजा इंद्रधुम अपनी तलवार से जब उसका सिर काटने गए, तुरंत भगवान के मनोवतार नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने कहा राजन मारो मत, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ये नारद मुनि भी बहुत सही मौके पर आते हैं। नारद मुनि ने आकर तुरंत तलवार को पकड़ लिया, मारो मत राजन, इसमें इस विश्ववसु सबर का कोई दोष नहीं है, आपका भी कोई दोष नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। राजन, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान इस नीलाद्री पर्वत पर नील माधव के रूप में रहते हैं, और ब्रह्मा जी के दूसरे 51 वर्ष से 100 साल तक ब्रह्मा जी के दूसरे 50 वर्ष में वही भगवान नील माधव के रूप में न होकर जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ पर रहते हैं। इसलिए राजन, आज ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए अब भगवान वहां पर नील माधव के रूप में नहीं रहेंगे। भगवान की इच्छा है कि वे अपना ऐश्वर्य रूप प्रकट करें, ऐश्वर्य रूप में उनकी सेवा हो। इसलिए हे राजा इंद्रदुम्न, तुम इसी नीलाद्री पर्वत के ऊपर जहां पर नील माधव थे, यहां पर एक भव्य मंदिर बनाओ, और इस भव्य मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान होंगे, और भगवान लकड़ी के रूप में यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। जब मंदिर हो जाएगा, भगवान आ जाएंगे, तब इस भगवान की सर्वप्रथम पूजा करने के लिए मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के पास लेकर जाऊंगा, हम ब्रह्मा जी को लेकर आएंगे, यहाँ पर ब्रह्मा जी सर्वप्रथम पूजा करेंगे। इस प्रकार से नारद मुनि ने कहा, और कहा कि सबसे पहले मंदिर बनाने का काम आरंभ किया जाए। यह कह के नारद मुनि तो चले गए, क्योंकि श्राप है दो घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते। राजा इंद्रधुम बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर अपने मंत्री युद्धवीर को कहा कि बहुत जल्द यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाए। अब जो शबर के राजा थे वो तो बहुत नर्वस हो गए, बहुत दुखी हुए कि हम तो अब तो गए, अब तक तो मैं ही पूजा सेवा करता था, अब तो राजा के हाथ में ये कारोबार आ गया, तो हम शबर जाति की तो क्या गिनती है इन लोगों के बीच में। शबर राजा ने कहा, लेकिन फिर भी शबर राजा ने इंद्रधुम को कहा कि हे राजा, हमारे लायक कोई सेवा है? इंद्रधुम राजा ने कहा क्यों नहीं, तुम्हारी सारी जितनी भी शबर जाति है इस दुनिया में, सारी शबर जाति को मंदिर बनाने में लगा दो, उनको बोलो कि मंदिर बनाने लगे, और जब मंदिर बन जाएगा तब हम भगवान की आराधना पूजा इत्यादि प्रारंभ करें। शबर राज विश्ववसु प्रसन्न हुए, और अपनी सारी जाति को लेकर, सब को लेकर बहुत सुंदर मंदिर बनाना प्रारंभ किया। और यहाँ पर मंदिर बन रहा था, और वहां पर राजा को, विद्यापति ने राजा को कहा कि राजा, आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने चाहिए। 100 अश्वमेघ यज्ञ विद्यापति ने राजा इंद्रधुम से करवाया। 100 अश्वमेघ यहाँ पर संपन्न हुआ, और यहाँ पर कई वर्षों के बाद मंदिर का 95% काम संपूर्ण हो गया, केवल 5% काम बाकी था। जैसे घर पे कुछ फर्नीचर हम करवाते हैं, घर का काम, तो सब कुछ हो जाने के बाद भी लास्ट जो हाथ होता है वो बाकी होता है। 5% काम बाकी था, तब राजा इंद्रधुम ने नारद मुनि का स्मरण किया। नारद मुनि आए, नारद मुनि ने राजा इंद्रधुम को कहा कि मैं तुम्हारी ब्रह्मा जी के पास जाने की व्यवस्था कर देता हूं, तुम जाओ और मैं पीछे से आता हूं, मुझे कुछ काम है। राजा इंद्रधुम पुष्पक विमान में बैठकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म लोक में पहुंच गए। सभी लोग को भेजते हुए स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक पर पहुंचे, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी पर नीलाद्री पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हम लोगों ने किया है, और उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए कृपया करके आप आइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो आऊंगा, लेकिन राजन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और ये गड़बड़ क्या हुई है, तुम पृथ्वी लोक के ऊपर जाकर देख लेना। मैंने तुम्हारा इनविटेशन आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, अब तुम जल्द से जल्द यहां से निकलो। ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों कहा? ब्रह्मा जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्मा जी की जब एक सेकंड होती है तब यहां पर कई युग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के वहां जब एक सेकंड का काटा हिलता है तो यहां पर सतयुग त्रेता युग द्वापर कली सतयुग त्रेता द्वापर कली हजारों युग बीत जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी जाओ। राजा इंद्रद्युम्न जब ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी लोक पर आए तो आश्चर्यचकित हो गए, उनकी तो बुद्धि फेल हो गई। क्यों? क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्म लोक जाकर ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के पास केवल 2 मिनट रहे, 2 मिनट रहकर वापस नीचे आए, तब तक तो यहां पर 1000 चतुर्युग बीत गए। 1000 चार चार युग होते हैं, 1000 चतुर्युग बीत गए। और राजा इंद्रद्युम्न ने आकर देखा तो मैंने जिस लोगों को यहां पर छोड़कर गया था वो कोई दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो मरे हजारों वर्ष लाखों वर्ष हो गए थे, लेकिन मंदिर तो वह का वही था, मंदिर वहां से नहीं हिला था, मंदिर तो वैसा ही था। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि एक ब्राह्मण वहां पर आ रहा है, एक ब्राह्मण भगवान की सेवा पूजा करने के लिए जा रहा है। राजा इंद्रद्युम्न ने उस ब्राह्मण को रोका, यहां पर आओ, मैं यहां पर विद्यापति ब्राह्मण को छोड़कर गया था, उनके अंडर में इस मंदिर का सारा पूजा पाठ इत्यादि करना है, तो तुम ये जो पूजा की थाली लेकर जा रहे हो ये सब विद्यापति ब्राह्मण के अंडर में ही हो रहा है ना, मनमानी ढंग से अपने मनमाने से तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो ब्राह्मण ने कहा विद्यापति कौन है, हम कोई विद्यापति विद्यापति को नहीं जानते। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा विद्यापति को नहीं जानते हो? अरे ठीक है, विद्यापति को नहीं जानते हो, राजा इंद्रद्युम्न को तो जानते हो ना। राजा इंद्रद्युम्न कौन, ये कौन है? उसने कहा राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानते हो? ये मंदिर क्या तुम्हारे बाप ने बनाया है? ये मंदिर किसने बनाया जानते हो? तो ब्राह्मण ने अच्छा हाँ 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 हाँ, हजारों हजारों वर्ष पूर्व एक राजा हो गए थे, बहुत अच्छे थे, अवंतिकापुर के अवंतिका देश के राजा थे, उसको वैराग्य आया, यही राजा की कथा कहने लगा। हजारों वर्ष पूर्व एक राजा हो गए, उनका नाम इंद्रद्युम्न था। हाँ याद आया, ये राजा इंद्रद्युम्न का वो मैं ही हूं। ब्राह्मण ने कहा लगता है किसी ड्रामा कंपनी में काम करता होगा, और ड्रामा में भी इंद्रद्युम्न का रोल करता होगा, और इसे इंद्रद्युम्न का भूत चढ़ गया है। होता है ऐसा कभी कभी। एक बार एक व्यक्ति ड्रामा कंपनी में काम करता था और उसको ड्रामा कंपनी वाले महाराणा प्रताप का ही रोल देते थे। कभी भी ड्रामा होता था तो महाराणा प्रताप का ही रोल देते थे, और महाराणा प्रताप का रोल करते 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 उसे ऐसी बुद्धि हो गई कि मैं महाराणा प्रताप ही हूं। और रास्ते में भी जब घूमता था तो कई किलो का बख्तर पहनकर और वो बूट इतना लंबा लंबा बूट पहनकर हाथ में तलवार लेकर ऐसे ऐसे करके ही रास्ते में चलता था। तो एक बार चलते चलते BST बस में चढ़ गया और बस में चढ़ के तलवार हिलाने लगा, मैं महाराणा प्रताप। बस में बैठने वाले सारे जितने भी पैसेंजर थे सब डिस्टर्ब हो गए, ये तलवार हमें लग जाएगा, बोलो इसको कुछ बोलो, कंडक्टर को कहने लगे, क्या किया जाए क्या किया जाए, महाराणा प्रताप कैसे इसको बस से उतारा जाए, बस से उतरता भी नहीं है। तब कंडक्टर को एक युक्ति हुई, उन्होंने बस को रोका और वो टिंग टिंग बेल बजाया और बेल बजाकर कहा कि चित्तौड़गढ़ आ गया। महाराणा प्रताप तुरंत उतर गए, चित्तौड़गढ़ आए। होता है ऐसा, ड्रामा करते करते कभी कभी ऐसा भाव बन जाता है। तो ब्राह्मण को लगा कि ये इंद्रद्युम्न का रोल करता होगा और अपने आप को राजा इंद्रदुम्न ने कहा, मैं वही राजा इंद्रदुम्न हूँ और मैं ही इस देश का राजा हूँ। तब तक तो उस तभी समय का जो राजा था, और उस समय का राजा था गल माधव। गल माधव वहां पर आया और आकर कहा कि क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये अपने आप को इंद्रधूम राजा कहते हैं और ये कहते हैं कि ये मंदिर का मालिक मैं हूं, मैंने यह मंदिर बनाया है। गल माधव ने कहा कि भाई साहब, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। इंद्रधूम मरे, इंद्रधूम के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे मर गए, वो हजारों साल हो गए, तो इंद्रधूम अभी कैसे जीता जी रहा होगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस देश का राजा मैं हूं और मेरे अंडर में सब कुछ हो रहा है। इंद्रधूम ने कहा मैं राजा हूं, गल माधव ने कहा मैं राजा हूं। दोनों आपस में झगड़ने लगे और झगड़ कर इंद्रधूम ने तलवार निकाली, गल माधव ने भी तलवार निकाली और दोनों राजा आपस में ऐसा युद्ध किए। जब युद्ध करते करते जब दोनों को मरने का समय आ गया, जब दोनों एक दूसरे को तलवार मारने गए, उस वक्त आकाश से एक आवाज आई, राम राम। जब राम, भगवान श्री राम का नाम जब सुना दोनों ने, दोनों की तलवार रुक गई और दोनों ढूंढने लगे ये आवाज कहां से आई। तो आवाज, बाजू में एक कौवा बैठा था और कौवा अपने मुख से राम बोला। ये दोनों कौवे के पास गए और कौवे के पास जाकर कहने लगे, तुम राम नाम कैसे ले रहे हो? कौवा ने कहा कि मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूं, करोड़ों साल से इस जगह पर मैं बैठा हूं, मैं साधारण कौवा नहीं, मैं काग भूषणी हूं और युग के युग बीत गए लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई। युग युग में होने वाली सभी घटना को मैं जानता हूं। हे दोनों राजाओं, आप दोनों के बारे में मैं जानता हूं। तब दोनों राजाओं ने, गल माधव और इंद्रदुम राजा ने कहा, बताओ आप क्या जानते हो? तब काग भूषणी जी ने सारी कथा बताई कि हे गल माधव, ये साक्षात इंद्रधूम राजा ही है, क्योंकि ये ब्रह्म लोक में गए थे इसलिए ब्रह्मा जी के वहां पर समय और यहाँ के समय में बहुत अंतर है। जब ब्रह्मा जी के वहां कम समय में यहाँ पर ज्यादा समय बीत जाता है, इसलिए ये इंद्रधूम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर बहुत समय बीत गया। लेकिन तुम भी कोई बाहर के दूर के व्यक्ति नहीं हो। हे गल माधव राजा, तुम इंद्रधूम के समय में जो इंद्रधूम का मंत्री युद्धवीर था, वही युद्धवीर आज तुम गल माधव बने। और वह जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को भी कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इस समय विष्णु शर्मा हो ना, लेकिन यह इंद्रधूम राजा के समय में तुम विद्यापति थे, इंद्रधूम के ही मित्र थे। तुम तीनों उस समय के आपस के मित्र हो और इस प्रकार से तुम झगड़ो मत। और भगवान की इच्छा है कि तुम तीनों मिलकर भगवान की स्थापना करो। यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, उसके किनारे, समुद्र के किनारे तीन लकड़े बहते बहते आएंगे और उस तीन बहते हुए लकड़ों से भगवान का विग्रह बनाना और भगवान की स्थापना करना, यही भगवान की इच्छा है। इस प्रकार से राजा इंद्रधूम, गल माधव और विष्णु शर्मा ब्राह्मण उसके बाजू के गांव में गए। वहां पर जाकर देखा तो सचमुच समुन्दर के किनारे पर तीन लकड़े आए थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि तीन लकड़े थे 6-6 फुट के, 10-10 फुट के, परंतु 100 लोग मिलकर भी उस एक लकड़े को उठा नहीं सकता था। अंत में राजा ने बहुत बड़ी बड़ी क्रेन को लगाया लेकिन फिर भी उस लकड़े को कोई उठा नहीं पाया। एक दिन बीता, दो दिन बीता, बहुत बड़ी बड़ी शर्त इनाम रखा गया कि उस लकड़े को उठाकर नीलाद्री पर्वत पे मंदिर में पहुंचाना है, लेकिन यह काम कोई नहीं कर सका। राजा चिंतित हुए, परंतु एक दिन एक व्यक्ति आया, बहुत बूढ़ा और बहुत पतला सा व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि मैं इस लकड़े को उठाकर आपको जहां रखना है रख दूंगा। सब लोग ने कहा कि इतना बूढ़ा और इतना पतला व्यक्ति ये लकड़ा कैसे रख सकता है? लेकिन जब उसे चांस दिया गया तो आसानी से, जैसे खिलौना कोई उठा लेता है, वैसे उस लकड़े कास्ट के टुकड़े को उठा लिया और उठाकर जहां पर रखना था उस कमरे में रख दिया। भगवान की कृपा से वहीं पर एक ब्राह्मण आया जिस ब्राह्मण का नाम था अनंत ब्राह्मण। ये ब्राह्मण और कोई नहीं विश्वकर्मा ही अनंत ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहा कि मैं इस लकड़े से भगवान के विग्रह को बनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मुझे भगवान का विग्रह बनाने के लिए 21 दिन लगेंगे और मुझे आपको एक कमरे में बंद कर देना है, बाहर से कमरा तुम बंद कर देना और 21 दिन के बाद ही कमरा खुलना चाहिए, उसके पहले कमरा खोला तो मैं जवाबदार नहीं हूं। राजा ने कहा ठीक है। अनंत ब्राह्मण भगवान के उस विग्रह को तैयार करने के लिए बैठा और जैसे लकड़े को चैनी से जब उसको काटा जाए तो जो आवाज आती है वे आवाज आने लगी। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, वे आवाज आती रही। सब लोग राजा रोज आकर दरवाजे के पास बैठकर यही इंतजार करते थे कि कब 21 दिन हो। राजा की बहुत इच्छा थी भगवान का दर्शन करने की, राजा आवाज सुनकर चले जाते थे। इस प्रकार से जब 11 दिन बीत गए, 11 दिन तक आवाज आई, 12वें दिन सुबह राजा ने देखा कि आवाज आना बंद हो गया। 12वां दिन शाम राजा ने देखा कि आवाज नहीं आ रहा है। 13वां दिन हुआ, 14वां दिन हुआ, तब राजा ने सोचा कि नक्की अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, लगता है वो ब्राह्मण भूखा भूखा मर गया है क्योंकि 14 दिन से कुछ खाया नहीं है, या तो लगता है वो काम छोड़कर भाग गया क्योंकि आज के मिस्त्री काम छोड़कर भाग जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। लगता है वो काम छोड़कर भाग गया है या लगता है वे अंदर ही अंदर मर गया है क्योंकि आवाज तो आनी चाहिए। राजा ने कहा कि अंदर आवाज नहीं आ रही है, परंतु उसने कहा था कि 21 दिन के बाद खोलना। राजा से नहीं रहा गया, राजा ने सबको बुलाया और 14वें दिन रात को सब लोग सारी जनता वहां पर जुटी है और राजा ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकता हूं। राजा ने अपने हाथ से जब उस कमरे के द्वार खोले तो उस द्वार में 3 विग्रह जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी उपस्थित थे। राजा ने आश्चर्यमय विग्रह का दर्शन किया, उनके हाथ नहीं थे, पांव नहीं थे, पेट भी नहीं था। राजा ने ऐसे विग्रह आश्चर्यमय विग्रह को देखकर राजा ने दंडवत प्रणाम किया, हरे कृष्णा। राजा ने प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करके राजा ने देखा तो राजा बहुत दुखी हो गए। दुख इस बात का था, राजा ने सोचा कि मैंने 21 दिन का समय दिया था, मैंने 14 दिन में ही यह दरवाजा खोल दिया, इसलिए भगवान का विग्रह संपूर्ण नहीं बना। भगवान के हाथ और पांव बनना छूट गए हैं, अब क्या होगा। इस प्रकार से राजा बहुत दुखी हुए। सारी प्रजा अपने अपने घर चली गई, परंतु राजा अपने घर नहीं गए, वहीं भगवान के चरणों में बैठकर राजा अफसोस करने लगे, अपना सिर को पटकने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। प्रभु मैंने आपके हाथ को नहीं बनाया, आपके पांव को नहीं बनाने दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। राजा निर्जला राजा ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया और राजा जब अपना शरीर को त्यागने गए तब उसी वक्त भगवान के मुख से शब्द निकले। भगवान ने राजा को कहा कि राजन अफसोस मत करो, इस संसार में मेरे लिए कोई अलंकार नहीं है, मैं स्वयं अलंकृत हूं। अफसोस करने की कोई बात नहीं है, मेरी ही इच्छा है कि मैं इस रूप में रहूं। भगवान ने इतना कह के भगवान की वाणी बंद हुई और तुरंत नारद मुनि वहां पर आए। नारद मुनि ने राजा को कहा कि राजन भगवान के हाथ और पांव नहीं है, इसका अर्थ यह है कि भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे इस संसार में भौतिक लोगों की तरह भौतिक हाथ और पांव नहीं है, मेरे दिव्य हाथ और पांव है, उसे कोई देख नहीं सकता है। ये एक भाव है। और भगवान के हाथ और पांव नहीं है, उसका दूसरा भाव यह है कि ये मैंने भगवान को कहा था कि ऐसा रूप कलयुग में आप दिखाना। द्वापर युग में जब मैं भगवान के घर पे रह रहा था, भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलदेव जी तीनों रोहिणी जी के मुख से अपनी ही कथा सुनकर जब आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ अंदर चले गए, उनके पांव अंदर चले गए। उस वक्त में वहां पर उपस्थित था और भगवान श्री कृष्ण, बलदेव जी और सुभद्रा उनकी बहन के यह रूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया और मुझे उस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान से यही मांगा कि प्रभु आपने यह रूप मुझे दर्शन जो कराया है, यही रूप का दर्शन आप कलयुग में आने वाले जीव के लिए कराना। भगवान ने उस वक्त तथास्तु कहा था, इसलिए भगवान मेरी प्रसन्नता को रखकर कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए इस रूप में ही प्रकट होना चाहते हैं। ये भगवान की इच्छा है। नारद मुनि इतना कह रहे थे तब तो ब्रह्मा जी वहां पर आए। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि धन्य है, भगवान का प्राकट्य हो गया, यही जगन्नाथ जी है, यही सुभद्रा जी है और यही बलदेव जी है। भगवान की कल सबसे बड़ी आरती की जाए और भगवान का अभिषेक का प्रबंध किया जाए। भगवान का बहुत सुंदर अभिषेक किया गया, भगवान को स्नान कराया गया। आज ही के दिन भगवान को, भगवान जगन्नाथ जी को बहुत पानी से स्नान कराया गया और भगवान का अभिषेक हुआ, इसलिए आज के दिन को स्नान यात्रा कहा जाता है। आज ही के दिन यह हुआ था और ब्रह्मा जी ने भगवान की सर्वप्रथम आरती की। राजा इंद्रदुम्न ने ब्रह्मा जी को पूछा कि ब्रह्मा जी अब मैं क्या करूं, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने इंद्रदुम्न को कहा कि इंद्रदुम्न 15 दिन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दो और 15 दिन में भगवान का जो यह विग्रह है उसमें बहुत सुंदर कलर पेंटिंग इत्यादि कर दो, भगवान की आंख हाथ इत्यादि बना दो। और इस प्रकार से उस विधि के अनुसार आज भी, आज के दिन भगवान को बहुत जल पंच द्रव्य से भगवान को स्नान कराया जाता है, भगवान का अभिषेक होता है और अभिषेक करने के बाद 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी अपना दर्शन नहीं देते। भगवान जगन्नाथ जी अपना दर्शन 15 दिन नहीं देते हैं, इसलिए इस 15 दिन को अन अवसर कहा जाता है। अनवसर, अवसर का अर्थ होता है उत्सव, अन का अर्थ नहीं, उत्सव नहीं होता है उसे अनवसर कहते हैं। 15 दिन के लिए भगवान दर्शन नहीं देते हैं। भक्त के अपने अपने भाव है, 15 दिन के लिए भगवान क्यों दर्शन नहीं देते हैं। कुछ भक्तों का भाव है कि भगवान को बहुत स्नान कराया जाता है, आज के दिन इतना स्नान कराया जाता है, इतना स्नान कराया जाता है कि भगवान को ठंडे ठंडे पानी से स्नान करके सर्दी हो जाती है। और जैसे हमें सर्दी और जुकाम हो जाता है तो हम ऑफिस में कुछ 2-3 दिन नहीं जाते हैं, वैसे भगवान को सर्दी बुखार हो जाता है, इसलिए 15 दिन भगवान भी अपना बिजनेस, लोगों को आशीर्वाद देना बंद कर देते हैं। ये भक्तों का भाव है, इसलिए भगवान का दर्शन आप देखेंगे जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बंद होगा मंदिर। और भी कुछ भक्तों का भाव है, और ये सही बात भी है कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं, ऐश्वर्य में है लक्ष्मी जी के साथ। और 15 दिन के बाद जब रथ यात्रा होती है तो गुंडीचा मंदिर में भगवान जाते हैं, तो वहां पर गुंडीचा मंदिर को भगवान वृंदावन मानते हैं, वहां पर राधा रानी रहती है। तो राधा रानी के 5-10 दिन भगवान को रहना है और यहां से लक्ष्मी जी को छोड़कर जाना है, इसलिए लक्ष्मी जी को मनाने के लिए भगवान 15 दिन की छुट्टी ले लेते हैं संसार से। संसार में लोगों को आशीर्वाद और उद्धार करते ही रहते हैं, लेकिन 15 दिन के लिए केवल अपनी पत्नी को टाइम देते हैं। और पत्नी को टाइम देने के लिए जैसे इस संसार में भी कहीं घूमने जाना हो तो ऑफिस में लिखते हैं कि पेट में बहुत दर्द था इसलिए ऑफिस में नहीं आया, तो भगवान भी बहाना निकालते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए 15 दिन कोई काम नहीं, केवल लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और बाद में श्रीमती राधा रानी के साथ। तो ये भक्तों का अपना अपना भाव है, लेकिन आइए उस कथा में। राजा इंद्रदुम्न ने फिर आगे चलकर जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का विग्रह उस मंदिर में रखा। भक्तों वह मंदिर और कोई नहीं, वह नीलाद्री पर्वत और कोई नहीं, आज भी वह नीलाद्री पर्वत उपस्थित है। इसी भारत वर्ष में जगन्नाथपुरी नाम की जो जगह है, जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम की जगह है, उस क्षेत्र में नीलाद्री पर्वत आज भी है और उस नीलाद्री पर्वत के ऊपर जो राजा इंद्रधूम ने मंदिर बनाया था वह मंदिर आज भी है और वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी आज भी है। आज भी कोई उनका दर्शन करे तो वह कृतार्थ कृत्य कृत्य हो जाएगा और अपने जीवन में भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। और कथा में मैंने आपको कहा कि जिस कुंड में वह कौवा गिरकर चतुर्भुज रूप में हुआ था वह रोहिणी कुंड भी आज भी है। जगन्नाथ जी के मंदिर में रोहिणी कुंड का स्थान भी है और उसमें जल भी आज उपस्थित है, वहां जाकर हम उसमें आचमन भी कर सकते हैं। तो आज भी कोई जगन्नाथपुरी में जाकर इसी जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं और अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। तो आज जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिन है, आज ही के दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ और आज से 15 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है 4 तारीख को। तो सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लें और अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।